संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 99 की गाथा हो गई थी, अंत की 3-4 पंक्तियां रह गई थी जो निष्कर्ष की हैं, वो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार एक जो है ना ब्लैक टाइप में छपाई तो हो गया था, इस प्रकार प्रत्येक पर्याय स्वसमय में खचित है, निश्चित है, तो फिर उसमें अदला बदली का क्या काम शेष रह जाता है। इस संदर्भ में टीका में समागत यह वाक्य भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर पर ही प्रकट होता है। प्रत्येक पर्याय अपने स्वसमय में खचित है और एक प्रत्येक पर्याय स्व जब उसका नंबर आएगा, अवसर आएगा, तब वो प्रकट होगी। वो अवसर अनंत काल में, जिसमें आदि और अंत दोनों ही शामिल हैं, सिर्फ जिंदगी में एक बार आएगा। एक पर्याय एक ही बार प्रकट होगी ना, है ना, और कभी आएगा नहीं। ऐसी ये वस्तु की सुंदरतम व्यवस्था है। अब हमारा ऐसा, हमें ऐसा क्या, 5 द्रव्य ने तो चुपचाप स्वीकार कर है ही, उनको तो अजीब द्रव्यों में उनको उनने तो कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं है। अब एक एक जीव ही है, सो अश्विनी पंचेंद्री तक ऐसा कोई स्वीकार अस्वीकार करने का भाव नहीं है। अभिश्रेणी पंचेंद्री की पर्याय हुई है, बस इसमें ही ये बात है कि श्रेणी पंचेंद्री की पर्याय में भाई इसे पलटा पलटी करनी है। कोई कारण हो, कोई ये कारण है इसलिए हम इसकी पलटा पलटी करना चाहते हैं, तो कारण भी कोई इसे दिखाई देता नहीं है। अब थोड़े थोड़े स्वार्थ के कारण मुझे गुजरा, इसमें अनुकूलता नहीं है, इसमें अनुकूलता है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, और इनके लिए तुम इतनी बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था को पलटने का विकल्प करता है और वो विकल्प की तेरी पूर्ति नहीं होती है, तो उस व्यवस्था को ही अस्वीकार कर देता है, कि कितनी बड़ी अयोग्यता है। मैंने कोई साधारण व्यवस्था की बात तो नहीं है ना, जैसे भारत में, भारत के हित में कोई एक कानून बनाया गवर्नमेंट ने, है ना, कि भाई आप कहीं भी भारत को छोड़ के जाते हैं तो यहां से परमिशन लेके आपको जाना चाहिए, और जहां जा रहे हैं वहां की भी परमिशन लेना चाहिए, नहीं तो आप तकलीफ में पड़ जाएंगे, है ना। तो कह साहब हमें क्या, हम अपनी मर्जी से चाहे जाना जाए, तुमने क्या हमें खरीद लिया है। अब बिल्कुल देश के हित में और वस्तु की व्यवस्था है, और तेरे को कोई ऐसा कोई खास मतलब ही नहीं है, पूछ के जाना चाहिए का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि तुझे पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए कि मैं यहां का हूं अपनी पहचान के लिए, और बस पासपोर्ट तो आसानी से मैं हर एक को मिल ही जाता है। 2 अरब से 1 अरब 1.5 अरब जो लोग हैं सब पासपोर्ट ले ले रहे हैं, गवर्नमेंट तो ये चाहती है, वो परमिशन, उसमें तुम्हें कोई परमिशन का सवाल नहीं है, बस एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत ले लो। और जब तुम दूसरे देश का वीजा ले लेते हो जाते हो, तो यहां की गवर्नमेंट भी आपको, जब तक कोई आप पर विशेष प्रतिबंध नहीं हो, आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया हो कि जिसमें आपको जेल में जाने की जरूरत है ना, तो गवर्नमेंट नहीं रोकेगी, आप चाहे ना जाओ, हर एक को परमिशन मिलती है। मतलब वो परमिशन ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती हो, फिर आपको क्या। तो ऐसे ही कहते, इतनी सुंदरतम वस्तु व्यवस्था है और उसमें भी प्रत्येक परिणाम अपने अवसर पर ही प्रकट होता है। इन सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस कारण से होनी है वह तदनुसार ही होती है। जिस कारण से, तो कारण तो पांच बता ही रहे, यहां जिस कारण से का अर्थ निमित्त पूर्वक है, जिस निमित्त से, तो उसमें जो निमित्त होगा उस समय तो निमित्त भी हो जाएगा। ऐसा आरोप लगाते हैं आध्यात्मिक लोगों से कि ये लोग निमित्त को नहीं मानते। और इसका जवाब गुरुदेव श्री यही देते थे कि हम निमित्त को निमित्त मानते हैं, उपादान नहीं मानते। अब ये तो निमित्त को ही सब कुछ, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। अब सुने ना, बाहर का निमित्त अपने किसी से कुछ कह दिया और उसकी नौकरी लग गई, तो हम मानते हैं भाई हमारी, हमने उसे नौकरी दिलाई। अब उसमें उसकी उपादान अनादिकाल की अनंत प्रजाओं का क्रमबद्ध होना कि ये पढ़ के इतने तैयार होगा तो इस वक्त आएगा तो इस तरह यहां नौकरी करेगा, वो उसको तो हम कोई बात ही नहीं करता। जो सबसे बड़ा कारण है क्या, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। फिर निमित्त है तो कर्म का उदय है, तो कर्म तो फिर हमको ठीक करना पड़ेंगे ना। अरे कर्म वो जो तेरा अनादि से नक्की है ना, उसके हिसाब से होना होगा। ये कर्म की ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी नहीं है। ये समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं कि जब पहले तो नक्की वो है जो होना है, वो पहले से नक्की है अनंत काल तक का, और कर्म को अब नया होना है और वो उसमें बदलने की गुंजाइश नहीं है। तो अब कर्म ही इस बात के लिए हो गया बाध्य कि वो उसके अनुसार बंधे। अब मैं कर्म अच्छा बांधू बुरा नहीं बांधू, मुफ्त में हो तो उधर की फिक्र कर रहा है तुम, समझ में आया कि नहीं आया। पर्याय सब समय में आएगी, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब यदि ये पर्याय इस कर्म के उदय से आती है, माने हम मनुष्य जाति कर्म नाम कर्म का उदय हमें होना चाहिए, मनुष्य आयु कर्म का उदय हमें होना चाहिए, और जो जो भी निमित्त उसमें है वो कर्म के उदय, तो वो कर्म के उदय तो पहले बंधे होंगे, उसके अनुसार ही होंगे ना। क्या इसमें वो सब समझ लेना, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह होगा, वो सब वो भी सब उस व्यवस्था के तोड़कर नहीं होता। कहते 30 सागर की आयु बन गई थी उनकी, किसान सातवें नरक की आयु बन गई थी राजा सैनिक की, और वो अभी गए 84,000 वर्ष में पहले ही नरक में है, तो इसलिए उनको इतना पुरुषार्थ यहां करना पड़ा होगा। तीर्थंकर तो किसी बांधी और जी किया बहुत बहुत, कि वो तो पहले से ही नक्की था, ये भी नक्की था कि 33 सागर की बंधेगी, फिर ये भी नक्की क्या था कि इस समय में वो कम होके इतनी रह जाएगी, और जिस निमित्त पूर्वक माने जैसे परिणाम इनके होंगे वे परिणाम होने भी नक्की थे। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि नहीं साहब वो इतना इतना बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, हमारे 10 कर्म हैं, 100 कर्म हुए ना। इस क्रमबद्ध पर्याय से कर्म की फलोस्मी का कहां टकराव है, मुझे तो कहीं कोई टकराव दिखता ही नहीं है। टकराव तो उन दो लोगों में है जो एक कहता है कि जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा होगा। कि कर्म का उदय भैया कैसा आएगा, कि जैसा बांधेगा, जैसा बांधेगा वैसा उदय में आएगा, और जो उसमें चेंज मेंज नहीं हो सकता। हाँ यदि वो सब बताया है शास्त्र में कि ऐसे ऐसा करेगा तो चेंज नहीं हो जाए। अरे ऐसा नहीं बताया किसी शास्त्र में, ये बताया है कि जब ऐसे ऐसे परिणाम होंगे तब उसका ऐसा परिवर्तन होगा, और जिसको ऐसा परिवर्तन होना है उसके ऐसे परिणाम होंगे, और तुम्हें कुछ पता नहीं है कि किस परिणामों से कैसे होते हैं, मुझे क्या करना है। वो सब काम ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, और उसमें से बीच में कभी कर्म को करता है, कभी अपने को करता है। कर्म के उदय के अनुसार होगा, ऐसा कह के हमने कर्म पे सब डाल दिया। फिर हमने कहा कर्म के बुलाओ, मैंने कुछ नहीं, कहने जैसा कर्म बांधा होगा वैसा उदय में आएगा। फिर बांधने में तो फिर मैं अब मुझे संभल के रहना चाहिए, संभलने की कहा गुंजाइश है समझने ना। तो ये तो सब कुछ सुनिश्चित है और वो सारी व्यवस्था अत्यंत ऑटोमेटिक है, समझना ना। उसमें से तेरे को कुछ नहीं करना है। ये जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कि परम सौभाग्य की बात है कि हमें उसमें सोचना भी नहीं है कुछ है? परम सौभाग्य को हमने परम दुर्भाग्य मान लिया है। वो अपनी पाठमालाएं किताब है ना, तो उसमें एक ऐसा पाठ है नमीनाथ के बारे में, तो किसी ने कहा बहुत बुरा हुआ, तो वो कहते कि बुरा क्या हुआ है? दीक्षा लेना, श्रावक से मुनि बनना, ये बुरा होना है? ये कोई दुर्घटना है? ये चारों कसायों के उदय थे, मैं तीन कसाई का उदय था, प्रत्याख्याना संजलन, अब दो कसायों चली गई तो बुरा हुआ कि अच्छा? क्या तू एक बस एक व्यक्ति के हिसाब से कहीं से कुछ भी खोजे और उसके हिसाब से सारी जगत को बुरा और सारी जगत को अच्छा ठहरा दे है? फिर कहा गया ऐसा क्या, उनका तो ठीक हुआ सर, उनका तो निबट गया बढ़िया, लेकिन राजुल के साथ तो बहुत अन्याय हुआ, बहुत बुरा हुआ ना राजुल के साथ, क्या बुरा हुआ? शादी होने दी और शादी नहीं भाई, शादी होना अच्छा है कि नहीं होना अच्छा है? क्यों कि फिर उनने भी दीक्षा ले ली, उन्हें भी दीक्षा लेनी पड़ी, तो लेनी पड़ी कहां से निकाला तुमने? भारतीय संविधान में और जैन धर्म में भी, मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, वैसे ही ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि छठवें फेरे तक लड़का लड़की कुमारे रहते हैं, और जब छठवें फेरे के बाद ये साथ साथ वचन होते हैं और वे जब देख दोनों जने स्वीकार कर लेते हैं, अंत में ये भी कहते हैं कि तुम्हें ये मेरी सात शर्तें स्वीकार हों तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, माने अभी तक बात ही चल रही है, हुई क्या है? तो वो कहता है हां मेरी भी सात शर्तें हैं कि तुम भी रख लो, तो उसका मतलब वो भी अभी तैयार नहीं था, अभी तो उसको सब्जी सौदेबाजी करनी थी ना, तो वो अपनी सात बातें रखता है। अब तो दोनों राजी है, दोनों ने शर्तें मान ली एक दूसरे की, और फिर वो सातवां फेरा पड़ता है तब शादी मानी जाती है। अभी मान लो कि नैमिनाथ को तो बैराग हो गया, नैमिनाथ को जरा एक आराम करने दो, अभी कोई आदमी का हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता कि नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे है? है? उसके लिए आप क्या करोगे? अब वो मर जाए वहीं पर उसी स्थिति में तो क्या करें? वो लड़की कुंवारी है कि शादी शुदा हो गई है? अब उसकी शादी हो सकती है कि नहीं? क्या कहा मैंने? ये ऐसा नहीं कहा पहली दूसरी, क्या कहा? जब पहली दूसरी की गिनती करेंगे तो अभी पहली वही का है। जब हमारे संविधान में ये माना गया है और हरेक को ये अधिकार है, और हम समझना खतरनाक बात कहता हूं, हम यदि ऐसा कह रहे कि नहीं मैंने तो मन से मान लिया था इसलिए अब मैं नहीं, मैं तुम्हें समझती हूं कि मेरी हो ही गई, ये तर्क बहुत ठोका है, इसमें कुछ दम नहीं है। जब भी जिनकी सगाई होती है तो भी मन वचन का ऐसे पहले मानते ही है ना, क्यों स्वीकार करते हैं तब तो वे अंगूठी पहनाते हैं और अंगूठी पहनते हैं, तो ये तो सारे विश्व का नियम है। क्या कि वो दोनों लड़का लड़की मन से वचन से स्वीकार करते हैं तब जाकर के तब तो कोई बरात लेके आता है, तब तो कोई सब तैयार सज के तैयार होते हैं बड़े उत्साह के साथ, गाजे बाजे के साथ। माने सेंट परसेंट स्वीकृति है ये इस बात की पक्की हो गई ना, फिर भी हमारी समाज ने नियम बनाया है, हमारी गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, हमारी जुनवाणी ने इसे स्वीकार किया है कि जब तक 6 फेरे हुए तब तक अभी शादी नहीं मां होगी, जब 7वां होगा तब शादी मानेंगे। क्या मेरा मतलब समझ गए ना? तो इस सीधा सच्चा इस नियम को चैलेंज है। अब इस नियम के विरुद्ध की बात करते हैं कि साहब हम क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं करनी है, अब हम दीक्षा लेंगे तो तुम लो ना, तुम तो पहले ही नहीं करती, बराती नहीं बुलाती, दीक्षा लेती तो तुम्हें कौन रोकता था। लेकिन ये तर्क देना क्या कि अब मेरी उनके साथ हो गई है, वो नहीं हुई को हो गई मानना है, वो गलत है। सर तर्क समझ में आया ना? और अब ये रही बात कि ये ठीक नहीं है कि उनको उस वक्त ऐसा ऐसा कहेंगे तुम्हें पहले सोचना था, उनकी तुम्हारी अकल नहीं थी, तुमने दिमाग नहीं दिया, दूसरे का ध्यान नहीं रखा, ये नहीं किया, एक तुम्हें समाज के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कहां लिखा है? कल मैंने बोला था ना किस कहां लिखा है कि एक समय पहले जो राग रूप है वो अगले समय में बीतरा बेरागी नहीं हो सकता है? बल्कि ये लिखा है कि जितने भी जीव आज तक हुए हैं वो सब ऐसे ही हुए हैं, पहले एक समय पहले रागी थे और एक समय बाद वही रागी हो गए हैं। जब हम और तुम भी होंगे ना तब ऐसे ही होगा। ये सोचा सोची करने वाले थोड़ी कुछ कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब है वस्तु के स्वरूप के अनुसार विचार तो 24 घंटे ही होता है, ख्याल में है ना? और ये तो विचार तो उनने पक्का नक्की पहले ही कर लिया, कोई सम्यक दृष्टि ये नहीं जानता है कि भाई ये यदि मैं गृहस्थी में ही रहूंगा तो मोक्ष नहीं जाऊंगा, यदि मुझे मोक्ष जाना है हैं? तो मुझे नग्न दिगंबर दिशा ध्यान करनी पड़ेगी, ये सब जानता है ना मेरे कहने का मतलब। फिर क्या रह गई बात बाकी? तो अब आपने ये समझ लिया कि मैं मुझे दीक्षा लेना है, मुझे शादी नहीं करना है, मानो राजलेशी कहती है तो ठीक है दीक्षा ले शादी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरे पति देव दीक्षा ले गए तो मैं भी दीक्षा ले गया हूं। भारत की ललनाएं पति की आज्ञाकारिणी होती हैं, पति की अनुगामिनी होती हैं। क्या जैसा पति करते हैं वैसी वे करते हैं, इसलिए मैं दीक्षा लूंगी। क्यों ठीक है? अब तो किसी को ऐतराज नहीं, भयंकर ऐतराज है मुझे कि पति दीक्षा लेगा तो तू लेगा, नहीं वो पति नहीं लेगा तो तू नहीं लेगी। इतने भैराग भैराग तो है नहीं, अपने पति के प्रति तीव्रतम राग है। क्यों? और इसलिए कह तो ऐसे लोग दीक्षा लेके क्या निहाल करेंगे? उस पति को सहयोग तो करेंगे ना, खाना वाना बना के तो खिला दिया करेंगे, नाश्ता मास्ता क्यों? वो जाकर के उनको उपसर्ग ही करेंगी। बोला अब पत्नी का सेवा में आना उपसर्ग के अलावा क्या है? अब विचार करो गंभीरता से, यानी पति ने दीक्षा ले ली इसलिए मैं दीक्षा लूंगी, ये तर्क भी बहुत बुरा है, गलत है। कैसा बाब राजुल का विरोध कर, राजुल का विरोध मैं क्यों करूंगा? मैं तो उन पंडितों का विरोध कर रहा हूं जिनने वो राजुल को इस रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी राजुल कहां थी? समझ में क्या? उस सत्य को प्रस्तुत नहीं किया और उसे महान माना کہ اس نے کہا کہ ہاں جیسا کروں گی ایسا کروں گی ایسا کروں گی، کہ ہاں بہت بڑھیا بیٹا، چڑھ جا بیٹا سولی پر، بھلا کرے بھگوان. پتی کو، پتا کو، ماں کو، باپ کو چھوڑ کر دیکھا لی جاتی ہے. اپنے پروچن سار میں لکھا ہے نا کہ اسے ماتا سے کہا، اور ایسا پوچھا جاتا ہے کہ اے ماتا، تو میری ماتا نہیں ہے، شریر کی ماتا ہے. ایسا اسویکار کر کے، وہ تو جو سات پھیرے پڑے تھے کہ پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی اس بات کو سویکار کر کے بھی انکار کر دیتا ہے دیکھا لینے والا. تو ابھی ان کی تو شادی ہوئی ہی نہیں تھی کیا؟ تو پھر پتی کے، پھر پتی کی کہاں، پھر پتی کہاں ہے؟ تو میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ وہ سماج کا نیم، وہ سماج کے ہت میں ہے اور دھرم کے انکول ہے. ایسا کوئی بھی کتھن اور سربگ بھگوان کے مکھ میں ڈال کر کہنا، یہ بہت بڑا اپرادھ ہے. کیا کسی کے دیکھا دیکھی دیکھا لینے کی بات کی پرشنسا کرنا، یہ بھی اتنا ہی بڑا اپرادھ ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دو دشا تو ان کی ویسی ہوتی ہے جیسی آدیناتھ کے ساتھ دیکھا لینے والوں کی ہوئی تھی. جو دیکھا دیکھی کریں گے اور اندر سے بیتراک بھاو نہیں ہوگا، سمنا درشن نہیں ہوگا، سمنا درشن ہوگا تو تین کسائے کا ابھاو نہیں ہوا ہوگا. جیسا جیسا شاستر میں کرنانی یوگ کا، یہاں کرنانی یوگ کا کام میں لو نا، سچ مچ کرنانی یوگ کا یہ ابھیپرائے ہے کہ وہ آپ کو یہ شکشا دینا چاہتا ہے کہ آپ ایسا ایسا کرو. جو کریا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کریا کو کرنے کی وہ آجنا دے سکتا ہے؟ وہ تو سروپ بتاتا ہے. کرنانی یوگ ہو چاہے چرنانی یوگ ہو، وہ تو سروپ بتاتا ہے. جیسے چرنانی یوگ میں اتنا وستار سے ورنن ہے، تو وہ تو یہ جیو کہاں کہاں ہیں وہ یہ بات بتا رہا ہے. اور ہمارا جیون اہنسک ہونا چاہیے. تو اہنسک جیون کے لیے ہمیں جیووں کا پتہ ہی نہ ہو، جیو جاتی جانے بنا دیا کہاں سے ہو؟ سب سب جگہ جیو ہیں، انہیں تو پہچان. اسے تو ہم پتھر سمجھ رہے، تو اس پہ ہم دیا کیسے آئے گی؟ مانے اس کو ہم جیو سمجھے نا. کھیمچند بھائی تو ایسا بولتے تھے کہ تم نے یہ جیو نہیں مانا اسے، تو ایک دن تم کو ایسی پریائے پراپت ہوگی کیسی کہ دنیا تمہیں جیو نہیں مانے گی. تمہارا استتو جیو کے روپ میں سویکار نہیں کیا جائے گا. وہ ایسا نہیں کہتے تھے کہ تم آلو کو کھاؤ گے تو آلو اگلے بھو میں منش ہوگا، پھر تم آلو ہو گئے اور تمہیں وہ کھا جائے گا. ایسا حساب کتاب زیادہ نہیں ہے. پھر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے پرسار یوگ کے شاستروں میں جو یہ کہانی قصے لکھے ہیں کہ ان کے نونوں بھو سے سمبندھ تھے، اس کے ورودھ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت جیووں کے رہے ہوں گے، اس میں مجھے رنچ ماتر بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان سے انت گنے جیو ایسے ہیں کہ جن کے آپس میں ایسے کوئی رشتے نہیں رہے، اب ہر اس میں بھی کوئی نہیں رہیں گے. کیا سمجھنا زیادہ یہ مانے ان نے ہمارے کو اتنا ہیوی کر دیا، نو بھو کی پریت لگی اور گیارہ بھو کی پریت لگی اور فلانا فلانا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اور تم ہو سکتا ہے پہلے زندگی میں کبھی ملے ہی نہیں ہوں. اب دیکھے کہاں کہاں ملے ہوں گے، کہاں کہاں ملے ہوں گے، لیکن 99% اتنا یہ چانس ہے کہ ملے ہی نہیں ہوں، سمجھنا. اور بھوشیہ میں کبھی ملیں گے ہی نہیں، ایسا بھی ہے 99%. 1% کداچت وہ پرانوں کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن وہ کہانیاں ان کی آتی ہیں, بھی ملے تھے ان کے بھی نو بھاؤ آتے ہیں, نو بھاؤ کا ان کو جاتا سمرن ہوتا ہے, وہ آدر بن جاتا ہے, پھر سب کو ایسا لگتا ہے ہم اگلے بھاؤ میں مل جائیں گے, پھر یہاں مل جائیں گے, پھر وہاں مل جائیں گے, پھر ندان مانتے ہیں میں ایسا ہو جاؤں, میں اسی ماں کے پیدا ہوں, وہ ماں کہتے ہیں یہ بچے میرے ہی پیدا ہوں. اب تم اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگلے بھاؤ میں بھی عورت ہو, یہی سمجھتی ہے کیا؟ استری لنگ کا چھید نہیں کرنا ہے, استری لنگ کا چھید ہو جائے گا تو باپ بن جائے. ایسا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سمبندھ نہیں ہے, اور سمبندھ کی بات نہ بھوت کال کی سوچو نہ بھوشیہ کال کی سوچو. کیوں؟ اس بھو کی تو سوچیں کہ کل کی مت سوچو. کیا؟ کہ کل بھی ہمارا اور تمہارا ملان رہے گا یہ بھی بالکل سنشچت نہیں ہے. کیا ہوگا تو کیولی کے کیا کیولی کو پتا ہوگا, ہم کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ملیں گے تو مل جائیں گے, نہیں ملیں گے تو نہیں ملیں گے. کہ نہیں نہیں تم کل ملو نا تو مجھے کل دے, تمہارا رومال ہے میں تمہیں دینا ہے, دے دوں گا کل. کہ آج ہی دے دو نا, ملے تو نہیں ملے ٹھیک ہے, کل کو کیوں روڈ چھوڑتے ہو؟ سمجھ گئے نا, جو تم کو تیبر وکلپ ہے وہ آج ہی کرو پورا نا, جھگڑا ختم. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سندرتم ویوستھا ہے بڑھیا, اس کو ہمیں سہج بھاو سے سویکار کرنا چاہیے. اس کے سہج بھاو سے سویکرتی کا نام سمیک درشن ہے. میں کوئی تم سے اور کوئی بات کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بار بار اس بات کو مل لے کے بیٹھ جاتے ہوں. کیوں یہ سمیک درشن کی بات کب تک کرنا چاہیے بیٹا؟ جب تک نہیں ہوا تب تک کرنی چاہیے نا. یہ کوئی ہاں وہاں کی گپ نہیں ہے, ایسی باتیں نہیں سنا رہے ہیں آپ کو. چاروں انیوگ کی بات کر کے یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ چاروں انیوگ جھوٹے ہیں. ان کی اسٹائل ہے ایک کتھن کرنے کی, انہوں نے اپنی اسٹائل میں وستو کے سوروپ کو کتھن کیا ہے, سمجھے نا. لیکن اتنا تو ہم کو سمجھنا ہی چاہیے نا کہ بھائی کس کہانی سے کیا ہمیں نشکرش نکالنا چاہیے. کیا جیسا وہ اپنا ادھارن دیتے ہیں اس سیٹھ کا کہ وہ ناٹک دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا سیکھا, تو انہوں نے کہا کہ یدی ہریسٹن جیسی دردشا کرانی ہے تو ستیہ بولنا, نہیں دھندے پانی تو اس میں جھوٹ کے بنا تو چلتا ہی نہیں ہے. ایسی شکشا گرہن نہیں کرنا, اتنی تکلیفوں کے ہونے کے بعد بھی ان نے ستیہ کو نہیں چھوڑا, یہ گرہن کرنا. تو آپ نے ان انیوگوں سے جو الٹا سیدھا گرہن کر رکھا ہے, میں تو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ان انیوگوں کا اس روپ میں ہمیں گرہن کرنا چاہیے. ہم تو مطلب نہ تو ہمارے نیمی ناتھ بھگوان کوئی رشتے دار ہیں, نہ راجل سے کوئی سمبندھ تھا, پہلے ملے بھی نہیں تھے کہیں, پہچان بھی نہیں تھی, کیا ملے نا, اور نہ بھوشیہ کا کوئی ٹھکانا ہے, ملیں گے کہہ رہے تو چلے گئے موکش. نیمی ناتھ سمجھ گئے نا آپ کی نا. اب ہم تو بالکل نشچنت ہو کے کیا بیتراگ بھاو سے سوچ کے نرنے کر سکتے ہیں نا. ہم بھی اپنا نرنے کرنے میں شانتی جی کوئی راگ دیش کیوں لائیں بیچ میں؟ کیوں میں آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے دل میں بھی ایسا پرشن کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پشو مسو شری کرشن بھی کچھ نہیں کرتے, پشو بھی نہیں ملتے وہاں, ایسا ہوتا ہی نہیں, جو سمبھاونا بہت تھی کیونکہ ایک چھتریوں کی جو تیرتھنکر جس کلو میں پیدا ہوا ہوں اور ابھی موجود ہوں تیرتھنکر آسمے نا, اور اس کل میں اور ایسا ماس مدرا کا سیون ہونے کی بات بھی کوئی سوچ سکتا ہے, یہ اپنے گلے نہیں اترتی. کیوں وہ نہیں ہوتی گھٹنا, नहीं होती तो मजा आ जाता, कम से कम जमीनाथ की शादी तो हो जाती, राजल की शादी भी हो जाती, क्यों ठीक रहता ना। अपन को जो लड्डू खाने को मिलने वाले थे वे भी मिल जाते, बरात में वो तो लड्डू ही मिलते हैं। अरे भाई उनका तो काल आ गया था, समझे ना, तो उस समय उनको दीक्षा लेनी ही थी, अगले समय में तो उनके छत में साधना गुणस्थान होना था, तीन कसार का अभाव होना था, तो तुम्हारे उस एक निमित्त के पीछे उसके लिए रुक जाता है? ये वस्तु के स्वरूप पर विचार करें तो नैमिनाथ पर गुस्सा नहीं आया ना। तुम्हें कुछ सोचना था तो तुमने कुछ नहीं सोचा, क्या मतलब है? तुम्हें जब ही कहना, तुम्हारे मन में कुछ बेचार था तभी कह देना था, ऐसा ही क्यों किया, ऐसे ही क्यों किया। वो कह रहे हमारे मन में नहीं था, तुम घोड़े पर बैठ के ही क्यों आए, दरवाजे तक क्यों आ गए, हमने खिड़कियों में से तुम्हें देख लिया घोड़े पर बैठे मुकुट बांधे, यहां तक तो पहले थोड़ी सी सोच लेते तो इतना एकदम दृश्य मार्मिक हो गया, ये तो नहीं होता कि नहीं मैं तो पक्का शादी करने ही आ रहा था, क्या सोच लेता, मैं तो ये सोच रहा था कि ये जो मुझे रथ में घोड़े पे हाथी पे जहां भी बैठना है ये लोग देरी क्यों कर रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं करते हैं, समझ गए ना। मुझे तो जल्दी पहुंचने की आकुलता थी, जल्दी फेरे पड़े और समझे ना, मुझे राजू से मिलान हो गए, मुझे इस बात का तीव्रतम विकल्प था। तुम कह रहे कि मैंने कोई ऐसा थोड़ी था कि विचार नहीं था और मैं घोड़े पर बैठ गया था, तीर्थंकर तो कम से कम ऐसा नहीं करते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं क्या कह रहा हूं, ये कोई छलमल नहीं है, ये वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध नहीं है। क्यों, एक समय राग अगले समय वैराग हो सकता है, तो उसके एक समय पहले तक बिल्कुल पक्का तीव्र राग था, उसमें कोई छलमल नहीं था, बराबर विचार से वो आए थे, वो ये थोड़ी जानते कि तुम्हारे यहां क्या होगा, कि साहब आपने ये भी नहीं सोची कि हमारी लड़की का क्या होगा, हमारी लड़की की क्या हालत होगी, और लड़की के बाप को हार्ट अटैक हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा, क्यों? अरे भाई लड़की के मां बाप हैं तो लड़के के भी मां बाप तो हैं ना, तो उसने अपने ही मां बाप का नहीं सोचा तो तुम्हारे मां बाप का क्या सोचते हैं, ये क्यों नहीं विकल्प आता है तुम इन सब पंडितों को, समझ रहे क्या 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 कह रहा हूं मैं, बोल खड़ा क्या कहा मैंने, यदि नैमिनाथ के मां बाप भी तो थे, यदि उनको कोई विकल्प आता तो अपने मां बाप का आता कि मैं मां को बिरा लेकर के और आशादी करने आया हूं, और मां की क्या हालत होगी, और मां की क्या हुई होगी, आप सोचो, ये तो कोई को सोचने की फुर्सत ही नहीं है, कोई कभी लिखता नहीं है उधर, उनको तो भूलेंगे कि वे कोई है कि नहीं है। और मैंने ऐसा भी देखा है कई पुराणों में कि फिर राजुल का क्या हुआ, इनका क्या हुआ, इसको ही भूल गए, तो आगे में नैमिनाथ गए, दीक्षा दी, दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक हुआ, फिर दिव्य ध्वनि खिली, और फिर रुक्मणी ने अपने पूरा भव पूछे, सत्य भामा ने अपने पूरा भव पूछे, तो जाकर के बस ये किया, आठों पटरानियां अपने पूरा भव पूछ रही हैं और नैमिनाथ आठों पटरानियों को पूरा भव बता रहे, क्या खेल है, पर आप समझ रहे हैं कि ये बता रहे ये हो गया, इसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, वहां राजुल का क्या हुआ किसी ने एक एक शब्द ही नहीं मिलता है, ये जूनागढ़ शब्द नहीं मिलता है, बोला गांव का नाम नहीं मिलता इन सब पुराणों में, तो उनकी यहां दृष्टि गई वहां नहीं गई। एक आदमी तुम लोगों में से ऐसा महाकाव्य लिखना कि जिसमें नेमिनाथ चले गए तो उनकी मां की क्या हालत रही, इसी बात का वर्णन हो 150 पेज में। क्या ये बात मैंने लिखी है? कहां लिखी? वो तुमने पढ़ी है, बताओ। मैं पंक्ति बोलता हूं, तुम्हें किताब का नाम याद आ जाएगा कि अपनी पत्नी को बिलखती हुई छोड़कर नेमिनाथ दीक्षा लेके चले गए, ये बहुत बुरा हुआ। लिखा ना उबाल पाठवा आदमी लिखा ना। तुमने कहा पत्नी को बिलखती, पत्नी का सवाल ही कहा है, अभी वही उत्तर दिया है। देखो वो पाठमाला कब लिखी थी? 40 साल हो गए होंगे कम से कम, 40 नहीं 50 ही हो गए होंगे, मतलब वो सन 69-70 में लिखी। कितने साल हो गए बोलो? 316 से 40 साल पहले भी मेरा सोचना ऐसा ही था, ये कोई आज की उपज नहीं है। क्या कि भाई शादी नहीं हुई थी तो पत्नी को रोती बिलखती छोड़ के सवाल ही कहां है? देखा ना उसमें, और मां से तो पैदा हुए थे ना, उनसे कुछ होना थोड़ी था संबंध स्थापित करने के लिए। क्यों? तो मां ने कहा क्या हुआ, मां को बिलखती छोड़ के उनने दीक्षा ले ली, ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सब तीर्थंकरों की मां आखिर में बिलखी तो थी, अंत में भले ही सबने मंजूरी दे दी हो। क्यों? समझ में आई ना? वो मां की कोई बात नहीं करता, और किसी ने उस मां की दुर्दशा का वर्णन नहीं किया है? कि नहीं साहब, नारी की इज्जत का सवाल है, तो मां नारी नहीं है? ऐसा कहता है, ये है ना, मां भी मां से तो संबंध था, उसके उदर में 9 महीने वो रहे थे, उससे पैदा हुए थे। मेरे कहने का मतलब उसकी कोई बात नहीं करता। बरात लेके गए थे और लौट के आई नहीं, बहू को लेके आने वाले थे और लौट के आई नहीं। नैरोबी में गए थे हम करीब 25 साल पहले पूज्य गुरुदेव श्री के साथ, पंच कल्याणक था। तो सच्ची घटना है कि पंडित धन्नालाल जी प्रतिष्ठाचारी थे, हम स्टेज पर बैठे हुए थे और ऐसे पास में, तो वो बोले हमसे, पंडित जी बारात में चलोगे? मेरी सचमुच समझ में नहीं आया कि कहां की बारात, कैसी बारात, या नैरोबी में बारात का कहां से क्या बात कर रहे? मैं किसकी क्या, अरे नेमिनाथ की बारात जाएगी ना, वहां नेमिनाथ के पंच कल्याणक हुआ था। मैंने छूटते ही कहा कि नहीं जाएंगे, ये सब लोग तैयार हैं और आप मना करते हो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? मैं ऐसी बारात में नहीं जाता जो बहू लेने जाए और बेटा दूल्हा खोके आ जाए। ये शब्द बिल्कुल हू बहू आज से 25 साल पहले हुआ नैरोबी में, मैंने कहे थे उनसे। मानो सावन का महीना था जब वो बारात गई थी, क्योंकि दीक्षा कल्याण का काल वही है ना नेमिनाथ का। तो अपने हिंदू वाले कहते हैं कि सावन में तो शादी होती ही नहीं, मैंने कहा गुजरात में होती है, क्या करें। मैं गुजरात की गुजराती बोल, देखो देखो नेमिनाथ की हुई थी, नेमिनाथ की हुई थी। मैंने कहा ज्यादा गड़बड़ मत करो तुम, जैसी नेमिनाथ की हुई थी वैसी तुम्हारी होगी। शादी के लिए थोड़ी नेमिनाथ आदर्श है, केवल ज्ञान के लिए आदर्श होंगे, वो कोई बढ़िया शादी थोड़ी है, वो तो सबसे ज्यादा असफल शादी है। शादी की दृष्टि से तो असफल ही है ना। क्यों? ऐसे ही जो वस्तु का स्वरूप है, सहज बहुत होता है। मन सैकड़ों बरातें जाती, मेरी सुनना क्या कहना चाहता हूं, अब जाती हैं और फेरे पड़ते हैं और पूरी शादी होती है और फिर जिंदगी भर साथ भी रहते हैं, पर ऐसी एकाद होती है रेयर केस होते हैं नेमिनाथ जैसी का, लेकिन वो भी होती है ना। क्या समझ में आया? है ना, एक हुई तो उसका मतलब होती है ना। तो और भी कैसे कई कारण हो सकते हैं कि लड़का मना कर देगा मैं शादी नहीं करूं, लड़की मना कर देगी मैं शादी नहीं करूं। रोजीना अखबार पढ़ लो, उसमें आता है कि लड़का के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी तो लड़की ने फेरे पड़ते में से कह दिया मैं नहीं करती इसे शादी। फिर बहुत समझाया लेकिन बस उस बारात फिर दिन ही शादी की लौट गई। ऐसे रोजीना समाचार आते हैं अखबारों में। क्यों? मुझे ये मालूम पड़ा, मुझे ये मालूम पड़ा, मुझे पहले लड़की को ढंग से दिखाया नहीं गया था और यहां देख के मैंने आगे दिखा दे तो गूंगी है। नहीं तो ऐसे जो चीज उसके ध्यान में नहीं आई थी वो तो कहता मैं नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे केस लाखों करोड़ों में एकाध ही होते हैं ना, अखबारों में वही वही भरे रहते हैं। ऐसी शादियां भी रोजाना होती हैं कि शांति से हो जाती हैं और शांति से वे जिंदगी भर अपने साथ रहते हैं, अखबार कोई लिखता ही नहीं। क्या कहें, अखबार के लिए तो समाचार ही ये है कि कहीं गड़बड़ हो और उसका नाम अखबार उनको समाचार मानता है, वो उसको समाचार ही नहीं मानता है। क्या समझे ना, उसको समाचार ही नहीं मानता है, क्या करें। तो ऐसे ही हमारे जनवाणी में भी हुआ है। कैसा हुआ है कि जो ऐसा कुछ अद्भुत हुआ तो उसको उन्होंने लिख दिया और हम वही वही पढ़ते हैं और उससे अपना माइंड बनाते हैं। मैं सबके दिमाग में ये डालना चाहता हूं बुद्धिपूर्वक कि जैसी जितनी घटनाएं जिनको तुम आदर्श माना मान के चल रहे हो जितनी हुई हैं उससे लाखों गुनी ज्यादाएं घटनाएं उससे उल्टी हुई हैं। और फिर हमें उसका विचार करना चाहिए ना। विदेश की यात्रा पर लोग पुराने जमाने में उससे जाते थे पानी के जहाज से। ये बहुत पुराने की बात नहीं है, 100-150 वर्ष पहले भी जाते थे। अभी भी अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो यहां से पानी के जहाज से लंदन गए थे और फिर लंदन से पानी के जहाज से ही अमेरिका गए थे। जब सबसे पहले गए थे, एक उनका नाम बता सकता हूं, नाम का नाम तनसुख सालगिया है। तो वो कहते थे हमारे पास पैसे नहीं थे, इतने ही पैसे थे कि लंदन तक पहुंच सकते थे। तो टिकट लंदन का ले लिया और फिर लंदन में उतर गए और लंदन में एक साल तक नौकरी करी। मिल जाती है वहां ऐसी टेम्परेरी नौकरी। फिर उससे वो पैसा इकट्ठा किया कि जिससे हमने अमेरिका का टिकट लिया। कार का वही, जब प्लेन तो चलते थे, ऐसा नहीं है नहीं नहीं चलते थे, वो इतना ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी, उनकी 60 वर्ष ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी। तो फिर प्लेन का होता था मान लो 1,000 रुपया तो उसका 100 रुपया, इतना कम टिकट होता था काहे का पानी के जहाज का। तो उससे हम इसलिए उसमें जाते थे ना। तो ऐसे लोग जाते थे। एक आदमी ने वहां पे एक छोटा सा चर्च बना के रखा था, कहां समुद्र के किनारे। ये अभी भी देखो बंबई में समुद्र है, वहां काली देवी कौन सी काली देवी बैठी है, मुंबा देवी बैठी है। कलकत्ता में समुद्र है, वहां काली देवी बैठी है। जहां जहां होंगे सब देवता वहां बैठे हैं, क्योंकि वहां इनकम के सोर्स अच्छे रहते हैं। क्योंकि लोग आते हैं जो विदेश में जाते हैं तो डर लगता है उन्हें बहुत ज्यादा, और डरे हुए लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना अड्डे वहीं बनाए हैं सबने। तो वो हरेक आदमी को ऐसे फोटो लगा रखे थे कि भाई इतने आदमी मेरे को $101 दे के गए और ये सुरक्षित लौट के आए। यदि आप जा रहे हो तो आपको सुरक्षित लौट के आना है तो $101 जमा कराओ। और लोग कहते हैं $101 तो बहुत ज्यादा नहीं है, जीवन जीवन का सवाल है ना, रक्षा का दे 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 दे। और वो फोटो खींच लेता था, लगा देता और लिखवा के ले लेता, साइन कर देता था। मेरे जैसा कोई गया सिर्फ रहा तो उसने कहा कि ये लोग तो आपको 101 रुपया दे गए डॉलर और लौट के वापस आ गए जिंदा, और वे लोगों की फोटो भी बताओ जो तुम्हें 101 दे गए और लौट के नहीं आए, उनकी फोटो भी देखूंगा वे कितने हैं। और जो तुम्हें नहीं दिया जिन्ना डॉलर और फिर भी वे लौट के आ गए, उनकी फोटो भी देखूंगा। वो जो तुम्हें नहीं दिया और लौट के नहीं आए, ये चारों के फोटो लगाओ और गिनती से 100 आ गए लौट के, 200 यहां आए, फिर मैं निर्णय करूंगा कि मुझे तुम्हें 101 डॉलर देना है कि नहीं देना। ऐसे तो कई बहुत कम होते हैं ना लोग, हो जाता है ठीक हो जाता है ठीक हो जाता है। भाई श्रीपाल का हुआ था, फलाने का हुआ था, और चलती है दुकान लाखों वर्ष तक, लाखों गांवों में दुकान चलती है। हो गया था ठीक, हो गया था ठीक, हो गया था ठीक। मैं पहले भी सत्यक विधान बहुत कराता था, किया मैंने 150 तो कराए होंगे, तो प्रतिष्ठाचारी बन गए। तो मैं देखता था कि उनमें से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सफेद दाग कहीं ना कहीं होता था, इसलिए वो विधान कराते थे। तो वो जब मैं वहीं ठहरता था तो वे नहाते धोते थे ना, तो देख जाता था। कई नाम मुझे अभी याद आ रहा है लेकिन बोलूंगा नहीं। यानी ये तीव्र मिथ्यात्व तो मुझे अंदर से बहुत गिलानी हुई कि मैं भले ही समझाता हूं, मैं यही समझाता था जो अभी समझाता हूं ऐसे ही, वो सब सुनते थे लेकिन अंदर में उनकी वो मान्यता थी कि वो उससे ठीक हो जाएगा, वो अभिषेक का जल ले लेके उसमें चुपचाप अकेले में एकांत में जाके लगाते थे। अब क्या पता किसका हुआ किसका नहीं हुआ, लेकिन मेरी अरुचि हो गई कि मुझे ऐसा नहीं कराना है, समझे, मेरी अरुचि बहुत हो गई कि मुझे इसमें ऐसा नहीं कराना है। तो इसलिए कितने उदाहरण हैं कि वस्तु का स्वरूप के हिसाब से हम सत्य बात कहना चाहिए ना। ये चारों अनियोग में जो भी कहानियां हैं ये हमारी मिथ्या मान्यता को पुष्ट करने के लिए हैं कि वस्तु के सही स्वरूप को समझने के लिए हैं, बताओ है? तो ये गलत मान्यताएं जो हैं मिथ्यात्व की, इनको पुष्ट कर रहे हैं उनसे, और जिसमें उसका जो सहयोग कर रहे हैं वे भी उतने ही बड़े पाप के भागी हैं। वे तो जब होंगे तो होंगे, और यहां लोग फंसा रहे हैं, लोगों को बराबर कह रहे हैं करके कराने के लिए, इसके लिए इसके लिए, ये अच्छा नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। कहां पढ़ रहे थे अपन, इन सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस कारण से होनी है वह तदनुसार ही होती है। इस प्रकार इस गाथा में यही बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ का प्रदेश क्रम और पर्याय क्रम पूर्णतः सुनिश्चित है। यदि इस संदर्भ में वो तो ठीक है, इस विगत गाथा में यह बताया गया है कि उत्पाद व ध्रुव द्रव्य का स्वभाव है। अब सोमी गाथा में यह बताया जा रहा है कि उत्पाद व ध्रुव में अभिना भाव है। तात्पर्य यह है कि तीनों एक साथ ही रहते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रहता। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि जिसने क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं किया उसने वस्तु के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। स्वभाव किसे कहते हैं, जो दो पर की अपेक्षा नहीं रखे, ऐसी पंक्ति आई ना, स्वभाव उसे कहते हैं कि जिसको जो पर की अपेक्षा नहीं रखे। तो ये परिवर्तन उत्पाद व ध्रुव ये वस्तु का स्वभाव है ना, तो इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो, तो अपने आप ही हो ना। तो जब एक अनादि काल से अनंत काल तक सुनिश्चित है तो फिर उसमें बदलने का क्या कारण हो, वो स्वभाव है ना, स्वभाव में तो हर आत्मा रह नहीं चाहता है। और स्वभाव की सहज स्वीकृति का नाम तो धर्म है ना, ये समझ लेना कि ये सहज स्वीकृति सबसे बड़ा धर्म है। इसके सामने कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी विधान, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कितना ही दान, कितना बड़ी मंदिर, ये सब जिन जिन को तुमने धर्म की गिनती में गिन रखा है वो इसकी पासंग में नहीं है। पासंग समझते हो? नहीं समझते? पासंग नहीं समझते? पुराने जमाने में जो दुकानदार है ना वो तराजू से तोल तोल के बेचते थे, ऐसे हाथ से लग के इधर बांट रख लिया और इधर ऐसा रख लिया, तो उसमें ऐसा होता था कि जहां ज्यादा नीचा है पल्ला मूल तराजू में इधर ऊपर है, तो उसको कोई उतनी चीज इधर बांध कर उसके ऊपर उसको ठीक करते थे, उसे पासंग बोलते थे। समझ नहीं? कौन कौन जानता था? एक पीछे वाला जानता था, देखो समझ गया ना, वो पासंग लगा था। तो वो कह रहे उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई भी पत्थर मत्था टुकड़ा मुकड़ा रेत मेत कुछ भी ली बांधी और उसे बांध दी, उसकी क्या कीमत थी। तो ऐसे ही कहते हैं कि वो तो है असली माल और ये उस पासंग के बराबर भी नहीं है, ऐसा समझ लेना। इतनी बड़ी बात मेरे चित्त में बहुत गहराई से बसी हुई है, नहीं कहूं क्या? जिस तुम्हारे जितने भी धर्म हैं उनमें आगे पीछे क्लियर लिखा, ऐसे पुण्य का बंद होगा, ऐसे ये बंद होगा, ऐसे ये हो जाए, अगर बंद ही बंद तो लिखा है ना, इसमें ये कहां लिखा है बंद होगा। ये तो कहता है कि तुम ये तुम स्वीकृति करो उसका नाम सम्यक दर्शन है, वस्तु के स्वभाव की स्वीकृति इसी का नाम तत्ववाद सिद्धांत है, इसी का नाम अपने आत्मा की स्वीकृति है। ख्याल में है ना, उसके माथे पर दुनिया भर के काम सौंप देना, ड्यूटी लगा देना आत्मा को, एक सेकंड भी सोचने की फुर्सत नहीं मिले, इसका नाम धर्म नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत कर देना कि तेरे को कुछ नहीं करना है और सारी दुनिया बिल्कुल शांति से ऐसी जैसी चल रही चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, ऐसी स्वीकृति। अभी मैंने कल कहा था कि अपना गिली गाथा चलाएंगे, लेकिन थोड़ा रह गया तो मुझे विकल्प आया, फिर मुझे डर लगता है कि वो जो रह गया और मैं उसे बोलूंगा तो फिर अगली गाथा नहीं आ पाएगी। क्योंकि उसमें असली मूल मुद्दे की बात लिखी ना, निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखा ना, तो वही तो लिखा कि सब कुछ नक्की है, तो सब कुछ नक्की है वाला मामला यदि मैं बोलने बैठूं और फिर उसमें बोलना खत्म करने के पहले वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता।